आत्मानुशासन लेक्चर नंबर 74। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम शुद्धात्मने नमः। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वच्छायाणं, नमो लोए सौवसाहूणं, लक्ष्मीनिवासनिलयं, विलीनविलयं निधाय हृदिवीरम् आत्मानुशासनमहं वक्षे मोक्षाय भव्यानां। पूज्य श्री गुणभद्र आचार्य रचित यह आत्मानुशासन नामक ग्रंथ है और उस पर क्षुल्लक मनोहर जी वर्णी जो सहजानंद जी उनके प्रवचन हुए हैं और इस आत्मानुशासन प्रवचन पुस्तक दूसरी उसके पृष्ठ संख्या 62 से हम पढ़ेंगे 62। यहाँ अन्य अन्य भावों में या अन्य अन्य पर्यायों में कैसे कैसे क्लेश है उसकी बात चल रही थी। नीचे का पैराग्राफ वहां से पढ़ते हैं, विशिष्ट तीर्यंचों का क्लेश। एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय सारे तीर्यंच है ना, निगोद की बातें बताई उन्होंने। अभी अन्य भी एकेंद्रिय है, अन्य द्विंद्रिय आदि, उनके भी कैसे कैसे क्लेश है वो दिखाते है, बता रहे। कभी सुयोग से, सुयोग ने या भाग्य से कहेंगे, कर्म के उदय से कहेंगे, क्योंकि वहां पर भी निगोद पर्याय में कभी संक्लेश कस्पी विशुद्धि होती है। वहां पर भी वैसे तो मनुष्य गति और तीर्यंच गति बनती रहती है अंतर्मूर्त में, पर निगोद से निगोद में जब आयु का अवसर आया तो निगोद संबंधी यानी साधारण अपर्याप्त वगैरह की आयु बांधी, इसलिए निगोद में से निगोद में ही जन्मता रहा लंबे काल तक। सुयोग से यानी कभी ऐसे ही कि विशुद्ध परिणाम में आयु बंधी तो वहां से निकला अन्य स्थावर हुआ। अन्य स्थावर का अर्थ क्या, प्रत्येक वनस्पति या वायु का एक, अग्नि का एक, जल का एक वगैरह हुआ, या दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय में उत्पन्न हुआ। अब आप हम सब अपने बारे में चिंतन करते जाए, इतना तो निश्चय हो ही गया ना कि हम लोग निगोद से निकल आए। अनंत जीव तो ऐसे है जो निगोद से आज तक भी नहीं निकले, उसको कहेंगे नित्य निगोद। और इतना तो विश्वास है कि विकल्प जालों से भी निकल आए,
नित्य निगोद को स्थान नहीं है, लेकिन
वो तो हाँ नहीं निकले उनको भी नित्य निगोद कहेंगे। ये क्या है, इतना विश्वास है कि विकल्प जालों से भी निकल आए, इसका अर्थ नहीं समझे मुझे। ठीक है, आगे पढ़ते तो ख्याल में आ जाएगा शायद क्या कहना चाहते। अब यह जीव पंचेंद्रिय, मन रहित पंचेंद्रिय विकल्पों की भांति ही समझ लीजिए, वे अपना हित करने में असमर्थ है और सैनी भी हुए, क्रूर जानवर पशु पक्षी हुए, तो वहां भी क्रूर पशु पक्षी हुए तो कौन सा लाभ पा लिया। नारकियों की दशा और अवस्था तो सुन ही रखी है, तिरियंचों के दुख सुन रखे हैं। बाजारों में देख लो, जहां मैदा दाल वगैरह बिकते हैं, एक ठेले में जिसमें एक भैंसा जुटता है 40 बोरे तो शायद रख लेते हैं, इतना हमारा अंदाजा है, और उनका वजन करीब 90 मन तक होती होगी। इतना बिकट बोझ एक भैंसा लादे चला जा रहा है, यानी वो तो बैलगाड़ी वाले वो भैंसा लगाते हैं ना, उसकी बात चल रही है। भैंसे भी लगाते हैं ना वहां पर, हाँ, रेड़ा भैंसा है ना, रेड़ा मराठी में उसको रेड़ा कहते हैं।
पाड़ो, पाड़ो,
પાડો તો નાનો હોય ને, પાડો મોટાને પણ પાડો જ કહેવાય. હા, પાડા એટલે ભેંસને નાનું બછડું હોય એને પાડા કહેવાય. ભેંસનો પાડો. હા, મરાઠીમાં રેડા કહેવાય ને પાડા કહેવાય. રેડકું, રેડકું કહેતે નહીં મરાઠી મેં અપન કહેતે રેડકું, રેડા ને રેડકું. હા, રેડકું, વાસરું, વાસરું. હા, કે વો ઇતના બોઝા જા લાદે જલા જા રહા હૈ ઓર વો ભૈંસા ભી કૈસા કે જિસકી ગરદન ફૂટી હુઈ હૈ, ખૂન બહે રહા હૈ, ફિર ભી કંધે પર જુઆ જોત દિયા. દેખો જિસકો યે તો વો બૈલગાડી હો યા ટાંગા હો યા જો કોઈ અન્ય જો જાનવર જિસ જહાં જોતે જાતે હૈ તો વહાં બારંબાર વહાં ઘિસને સે ઉનકે તો વહાં જખમ હો જાતી હૈ ઓર ફિર ભી ઉસી પર વો જોતે રહેતે હૈ. જાડા હો જાય વો તો બાદ, પરંતુ વો છિલ જાતી વહાં સે. હા, ક્યા હૈ એસા ચલતા હૈ. યહાં લિખા ને ગરદન ફૂટી હુઈ, ખૂન બહે રહા હૈ, ફિર ભી કંધે પર જૂતા જુઆ જોત દિયા ઓર કટઘરે કે ભીતર જકડ દિયા ચારો ઓર સે. ક્યા કરે અબ બેચારા, ન ચલે તો ચાબુક લગ રહે હૈ. અરે વે ભી તો હમ આપ જૈસે હી જીવ હૈ, હમ આપને ભી એસી પર્યાય પાઈ હોગી, ક્લેશ ભોગે હોંગે, ઉન દુઃખો કા કોણ વર્ણન કર સકેગા, વે હી જાને. ઉનકે ભૂખ લગી હૈ, માલિક કી મરજી હુઈ તો ભૂસ ડાલ દિયા, જબ માલિક કી મરજી હુઈ તો પાણી પીલા દિયા. મનુષ્ય ભવ કી ઉપયોગિતા કા બેસુદપના. અને યહાં ઇસ પર્યાય મેં હમ ઇતને સ્વાધીન હૈ, ફિર ભી કહેતે કે ઉસકે બારે મેં હમે કોઈ ઉસકી મહત્તા નહીં આ રહી હૈ, કે ઇસ પર્યાય મેં જો હમે અવસર મિલા હૈ ઉસકી દુર્લભતા ખ્યાલ મેં નહીં આતી હૈ. ઇસ મનુષ્ય ભવ મેં ઇતની પરાધીન પરાધીના ને પરાધીનતા નહીં હૈ, પરાધીનતા તો નહીં હૈ, ફિર ભી યહ મનુષ્ય પાએ હુએ પુણ્ય પાએ હુએ સમાગમ મેં સંતોષ નહીં કર સકતા. યહ ભી તૃષ્ણા કે વશુભૂત હુઆ અપને કો પરાધીન અનુભવ કરતા હૈ. મનુષ્યો કે દુઃખ તો બહુત કુછ અનુભવ કિયે હુએ હૈ ઓર નજર આ રહે હૈ. યહ મનુષ્ય બચપન મેં અજ્ઞાની રહા, જરા કુછ બડા હુઆ તો સ્વચ્છંદતા સે ખેલ કૂદ મેં અપના સમય ખો દિયા. બડા હુઆ, વિવાહ હુઆ, બચ્ચે હુએ, ચિંતાએ ચલી, રોગ શોક આદિ અનેક ક્લેશ હુએ. એ તો કિતને દેખતે ને યુવાની મેં કોઈ આત્મહત્યા કર રહે, કોઈ અપને બીબી કો માર રહે, બચ્ચે કો માર રહે, સ્વયં આત્મહત્યા કરકે. એને ક્યાં ક્યાં કૈસે કૈસે અભી કલ્પનાએ ભી હોગી ઉનકી ઓર કૈસે કૈસે દુઃખ ભી હો ગયે. બુઢાપે મેં શિથિલ હો ગયે, શિથિલ ને અભી કમજોરી આતી હૈ ના તો સભી પહેલે જૈસે સ્ફૂર્તિ નહીં રહેતી હૈ. ચલને ફિરને મેં ભી ફિરને સે ભી લાચાર, એક જગહ પડા રહેના ચાહતા હૈ ને પડના પડતા હૈ. હા, ક્યુંકિ ચલ નહીં પાતે હૈ, કિસી કો પેરાલિસિસ હુઆ હૈ, દૂસરે કે સહાય કે બિના ઉઠ નહીં સકતે, ખા નહીં સકતે, કિતની પરાધીનતા. એસે ટ્યુબ લગા કે ઉસમે સે ખાના ચલા જાતા હૈ પેટ મેં. એસે દુઃસહ દુઃખ મેં યહ મનુષ્ય ભવ બિતાયા ગયા હૈ, કૈસે કલ્યાણ કરે. અવસરો કા અનુપયોગ, યાને ઉસકા ઉપયોગ નહીં કર રહા હૈ. અવસર મિલા મગર ઉસકા ઉપયોગ નહીં હો રહા હૈ. એક શેઠ કી રાજા સે બડી મિત્રતા થી, શેઠ હો ગયા દુર્ભાગ્યવશ બહોત ગરીબ, તો અપને મિત્ર રાજા સે ક્યા માંગતા હૈ. હે રાજન, અબ દરિદ્રતા કા દુઃખ તો નહીં સહા જાતા હૈ, કુછ ઉપાય લગાઓ. તો રાજા કહેતા હૈ કે જાઓ, કલ દિન મેં 1 બજે સે 3 બજે તક કે લિયે આજ્ઞા દેતા હું કે હીરા જવાહરાત કે ખજાને સે जितने हीरे जवाहरात ला सको ले जाना, ले आना। सेठ पहुंचा हीरा जवाहरात के खजाने में। राजा ने खजानची को पहले ही सूचित कर दिया था कि 2 घंटे के अंदर सेठ जितना हीरा जवाहरात ले जा सके ले जाने देना। जब वह खजाने के भीतर गया तो कहीं एक ही जगह छोटे कमरे में न थे हीरा जवाहरात। बहुत बड़ा मैदान था, अनेक कमरे थे, बहुत सुंदर सुंदर खेल खिलौने थे। इन खेल खिलौनों को देखा तो उनमें ही बड़ा मन लग गया। उन खेल खिलौने में ही रमते हुए 3 बज गए। चपरासी ने खजाने से बाहर निकाल दिया। सेठ रोता हुआ राजा के पास पहुंचा। बोला, महाराज आज तो खजाने से हम कुछ भी नहीं ला सके। राजा ने दूसरे दिन के लिए 1 बजे से 3 बजे तक के लिए आज्ञा दी कि सोने के खजाने से जितना चाहे सोना ले आना। पहुंचा सेठ दूसरे दिन। वहां 1 से 1 सुंदर घोड़े बंधे हुए थे। सेठ घोड़ों का शौकीन था, उनमें ही रम गया। किसी घोड़े पर बैठकर उसकी चाल देखने लगा। इसी में ही 2 घंटे का समय व्यतीत हो गया। सेठ वहां से भी कुछ न ले जा सका। 64 पृष्ठ। ये स्टोरी बता रहे कि ये अवसर आता है परंतु उसका कोई उपयोग नहीं करता है, नहीं उसका कोई खो देता है, दुरुपयोग करता है। स्टोरी ऐसी चल रही है कि एक सेठ और राजा दोनों मित्र थे। तो दुर्भाग्यवश सेठ बहुत गरीब हो गया। तो राजा से कहते कि मैं तो बहुत दुखी हूं, मैं तो गरीब हो गया हूं। तो राजा कहते कि तू कल 1 बजे से 3 बजे तक ये हीरे जवाहरात के उसमें भंडारे में चले जाना और जितना चाहिए उतना, जितना ले आ सकता उतना ले आना। तो वहां जाता है तो खेल खिलौने में ही रमता है और उसका समय पूरा हो जाता है। अब ये दूसरे दिन फिर उसको चांस मिलता है सोने के, जितना सोना ले जाना चाहता है लिया। तो वहां तो घोड़े घोड़े का शौकीन था तो घोड़ों को यहां से वहां दौड़ाने लगा, कुछ न ले जा सका। फिर राजा के पास पहुंचा। 2nd लाइन 64 पेज। बोला, महाराज आज भी कुछ नहीं ला सके। राजा ने तीसरे दिन चांदी के खजाने में जाने की आज्ञा दी 1 बजे से 3 बजे तक के लिए। वहां पहुंचा सेठ तो देखता है कि बड़ा सुंदर मैदान है, कमरों में बड़ी अच्छी सजावट है, एक से एक सुंदर नारियों के चित्र थे, वहां रहने वाली अनेक सेविकाएं थी। इन सब में ही उसका चित्त रम गया। 2 घंटे का समय व्यतीत हो जाने पर चपरासी ने निकाल दिया। फिर राजा के पास वह सेठ पहुंचा। राजा ने 4th दिन के लिए फिर तांबा पीतल के खजाने में जाने की और जितना ढोकर ला सके लाने की आज्ञा दे दी। वहां सेठ पहुंचा तो देखा कि बड़े भारी एरिया में 1 से 1 सुंदर पलंग पड़े हैं। वह पलंग विलक्षण स्प्रिंग वाले थे, विलक्षण उनमें कोमलता थी। उनमें से पलंग पर वह लेट गया देखने और 2 मिनट में सो गया। सोते सोते ही 3 बज गए। वहां से भी चपरासी ने उसे बाहर निकाल दिया। अब यहां मूल बात पर आते, मनुष्य भोग के अवसरों की उपयोगिता का बेसुधपना। ऐसे ही यह खेलों खिलौनों में समय गुजार देता है। किशोर अवस्था में अनेक कलाओं में, खेलों में, प्रायोगिक खेलों में समय बिता देता है। जवानी में यह वासनाओं में समय गवा देता है। बुढ़ापे में खाट पर पड़ा हुआ कराहता हुआ समय गुजार देता है। इतर इसने कहां कर पाया। देवगति में भी अनेक कष्ट रहे, वे कष्ट थे उधम के और मन के। क्या कहा, वहां तो सभी अनुकूलताएं थी ना, तो वहां क्या कैसे कष्ट थे, उधम के और मन के। एक दूसरे की संपदा को देखकर वे सह नहीं सकते, ईर्ष्या करते हैं, जलते हैं, अपनी हीनता निरखकर निरंतर कष्ट भोगते हैं। उनका भी क्या जीवन। इन सब क्लेशों का कारण यह शरीर है। इस जीव ने जो भी कष्ट भोगा उस कष्ट का आधार माध्यम यह शरीर है। इसी से शुरू हुआ था ना वो तो अपनी गाथा श्लोक। हे आत्मन, तू अनादिकाल से शरीर धारण करता है। हम तुमसे केवल इतना ही कह रहे हैं संक्षेप में कि जितने भी संसार में क्लेश होते हैं उन क्लेशों के स्थानक यह शरीर है। इस कारण तू शरीर से विरक्त हो। और जिस प्रकार शरीर का संबंध छूटे, सदा के लिए क्लेशों से छुटकारा मिले भय यत्न कर, उससे विरक्त होना, क्योंकि अपना स्वरूप समझ में आ जाए तो शरीर के प्रति प्रेम रहेगा ही नहीं। यानी मैं उससे जुदा हूं, मैं स्वतंत्र हूं, मैं अनंत गुणों का पिंड हूं, शरीर तो जुदा है, संयोग में आई हुई चीज है, वो तो अनंत जुदे जुदे परमाणुओं का पिंड है जिसमें अनंत परमाणु हर समय आ रहे, अनंत उसमें से छूट रहे, हमें तो दिखाई देता है वैसा का वैसा स्थूल है ना, और हम नजरों से देखते हैं, आंखों से देखते हैं, तो वैसा ही दिखाई देता है, तो उसमें तो अनंतों की धूल आती है और जाती है, जैसे कर्म हम हर समय नए बन रहे अनंतों में और पुराने छूट रहे, ऐसे शरीर के भी परमाणु हर समय नए अनंत आते और पुराने नए पुराने में से अनंत निकल जाते। दुष्ट से छुटकारा पाने का गंभीर उपाय। भला किसी दुष्ट मित्र से पाला पड़ गया हो तो इस मित्र से छुटकारा पाने का क्या उपाय रचा जाता है? जब मालूम पड़ जाए कि यह मेरे साथ कपट करता है तो उससे उपेक्षा भाव हो जाएगा, और यही उपेक्षा भाव उस दुष्ट मित्र से छुटकारा दिला देगा। ऐसे ही शरीर का बंधन लग गया है तो इसे छूटने के उपाय में प्रथम क्या करना होगा कि शरीर का स्वरूप और अपना स्वरूप जानना होगा। प्रथम में प्रथम इस संबंधी विचार करना है कि मैं कौन हूँ, शरीर क्या है, मेरा क्या स्वरूप है, शरीर का क्या स्वरूप है। वो तो टोलेमन जी साहब लिखते हैं ना इसमें मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, वहां तो तू तो एक चैतन्य असंख्यात परदेशी अरूपी द्रव्य हो, और वो ज्ञान का पुंजानादि अनंत गुणों का पुंज है, पिंड है, और ये शरीर क्या है, नवीन जिसका संयोग हुआ है, और अनंत पुद्गल परमाणुओं का वो पिंड है जिसमें वो तो गलना बिखरना वो चलता रहता है उसमें पुद्गलों का। यह शरीर केवल दुखों का आश्रय है, यह मैं आत्मा ज्ञान और आनंद स्वरूप को लिए हुए है, ऐसा शरीर में और आत्मा में अंतर जानकर, ये सच में जान लिया तो शरीर से उपेक्षा हो ही जाती, तो फिर कहते शरीर से उपेक्षा करना, ऐसा उपदेश में तो ऐसा ही कहेंगे है? तो सही में उसका ख्याल में आ जाए स्वरूप, तो उससे तो किसी को भी अपने से प्रीति हो जाएगी, शरीर के प्रति उपेक्षा हो जाती। तो कहते शरीर से उपेक्षा करना और आत्मा में रुचि करना, यह अपना कर्तव्य होगा। मूल में ये रुचि जिसके है ना, वो कैसे भी करके उसको उपाय मिल जाता है, मार्ग मिल जाता है। तीव्र रुचि होनी चाहिए, जिसकी कहीं ना कहीं बाहर रुचि पड़ी है, तो कल बात आई ना, एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती, वैसे ऐसा शरीर में और आत्मा में अंतर जानकर शरीर से उपेक्षा करना और आत्मा में रुचि करना, यह अपना कर्तव्य होगा। हे भव्य आत्मन, इस शरीर को विपदा का स्थान जानकर इसमें मोह तो मत कर, यही मैं हूं ऐसी प्रतीति तो न बना, इस शरीर से न्यारा ज्ञानानंद स्वरूप मैं सत हूं, अजर हूं, अमर हूं, अजन्मा हूं, सत हूं यानी अस्तित्ववान पदार्थ हूं, अजर जरा से रहित हूं, मैं ना बालक हूं ना बूढ़ा हूं, अमर हूं, मरण नहीं मुझे, मैं तो अनादि अनंत हूं, और मरण नहीं तो जन्म भी नहीं है। उस निज अंतस तत्व का आश्रय करो, इस पुरुषार्थ करना, इस पुरुषार्थ से ही, पुरुषार्थ हुए ना, पुरुषार्थ से ही तेरे समस्त क्लेश दूर होंगे, यानी यही पुरुषार्थ है और कुछ नहीं है। अपना स्वरूप निश्चित करना है, शरीर का स्वरूप निश्चित करना है। 99 श्लोक आ गया नया, चेक किया है क्या उसको? देखो हम यहाँ टोडल में जी साहब के जो पुस्तक है ना उसमें से चेक करेंगे। अंतर्वांतम वदन विवरे क्षुत्रुषार्थ प्रतिच्छन कर्मायत्तम, यहाँ यत्त है, इस पुस्तक में परमायत्त सुचिरम उदरा वस्करे वृद्ध गृध्या गृध्या है गृध्या नहीं गृध्या निष्पन्दात्मा कृमि सहचरो जन्मनि क्लेश भीतो मन्ये जन्मिन अपि च मरणात् मन्ये जन्मिन अपि च मरणात् तन्निमित्ताद् विभेषी कर्मायत्ता के कर्मायत्तम क्या चाहिए आपके उसमें क्या है कर्मायत्ता यत्तम इसमें है इसमें यत्तह है ये इतने डिफरेंस अभी क्या पता मन सुचिरम उदरावस्करे ये सुचिरम कर्मायत्तम है क्या कर्मायत्ता है कर्मायत्त का क्या एक मिनट कर्म के आधीन हुआ कर्मायत्त है चाहिए कर्मायत्ता ही है कर्मायत्त हाँ विसर्ग जिसको कहते हैं हम पढ़ेंगे इसको अंतर्वांतं वदन विवरे शुत्रुषार्थ प्रतिच्छन् कर्मायत्तः सुचिरमुदरा वस्करे वृद्ध गृध्या निष्पन्दात्मा कृमि सहचरो जन्मनि क्लेश भीतो मन्ये जन्मिन् अपि च मरणात् तन्निमित्तात् विभेषी उसका अर्थ इसमें से देखते टोडरमल जी के उस पुस्तक में हे प्राणी तू माता का उदर रूपी विष्टा स्थान विषय कर्म के अधीन हुआ बहुत काल ताई बधने का लोभ करी बधने कहने बढ़ जाऊंगा वहां उस लोभ से अंतर्वांत जो माता का छाव्या हुआ अन्न ताको अपने मुखरूपी छिद्र विषय चाहता भया कोई बूंद मेरे मुख में परे ऐसे मुख फारे रहे है कैसा है वह प्राणी शुधा तृषा करी पीड़ित है बहुरी उदर का स्तोक क्षेत्र है यानी अल्प क्षेत्र है ताते तहां हलना चलना रहित है स्वरूप जाका ऐसा है बहुरी उदर विषय निब्ज है लट आदि जीव तिनका सहचारी साथी है ऐसे गर्भ विषय अवस्था हो है सो है प्राणी मैं ऐसे मानो हो ऐसा जन्म अवस्था विषय क्लेश हो है ताते डरया हुआ जन्म का कारण जो है मरण तिस्ते डरे हैं उसी का भावार्थ शरीर संबंधतय नरकादि विषय दुख हो है सो तो दूर ही तिष्ठो यानी उसकी तो बात दूर रहो अभी मनुष्य की बात करते गर्भावस्था में क्या क्या होता है तो यह उत्तम मनुष्य पर्याय पाया है ताका ग्रहण करता गर्भ विषय तो को कैसा दुख भया ताका तो चिंतवन करो ताका ने तुझे कैसा दुख हुआ था उसका जरा चिंतवन करो हम तो यहू माने हैं जो तू मरण तय डरे है सो मरण भय पीछे नवीन जन्म धरना होगा तो मरण से पीछे तो तत्काल जन्म दूसरा धरना पड़ता है और वो क्या क्या होता है जन्म विषय तय दुख पाया है तिसका भय तय तेरे मरण का भय पाइए यानी वो तो इसलिए मरण से डर रहा है कि वो तो जन्म का वहां जन्मने का भय या उसका दुख ज्यादा है यहाँ क्या कहते हैं हाँ नवीन जन्म धरना होगा जन्म विषय तय दुख पाया है तिसका भय तय तेरे मरण का भय पाई है ऐसा शरीर की उत्पत्ति विषय दुख जाने जन्म का दुख न होई सो उपाय करना इसलिए जन्म भी दुख रूप बताया है वो तो ज्यादा दुख है और वो तो जन्म लेना पड़ता है इसलिए मरण से डर रहा है ये कहते हैं अभी यहाँ हम प्रवचन पढ़ेंगे 65 पृष्ठ पर है, श्लोक के नीचे, गर्भतः मनुष्यों के क्लेश। हे प्राणी, तू माता के उदर में, जो कि मलमूत्र का स्थान है, वहां कर्मों के अधीन हुआ बहुत समय पर्यंत बढ़ने के लोभ से, क्योंकि 9 महीना वहां है ना, तो बढ़े, उसको ऐसा बता रहे कि जाने कि वो बढ़ने के लोभ से जो माँ ने चबाया खाया, उसे मुखरूपी छिद्र से उठाकर खाया। माँ, कोई बूंद मेरे मुख में पड़ जाए। यह जीव जब गर्भावस्था में आता है, तब माँ के पेट में रहता हुआ इस बात की चाह किए रहता है, कोई बूंद मेरे मुख में भी आ जाए, पर वहां खाने को कुछ मिलता नहीं है। किसी नली द्वारा जो बच्चे की नाभि से लगी रहती है और माँ के पेट से किसी स्थान से जुड़ी रहती है, उसके द्वारा ही कुछ आहार ले लेता है, यानी वो खून में से उसका जो कुछ हो जाता है। यहाँ तो इसके ऊपर जैसे कभी कल्पना करके उसको उससे उन दुखों से बताया है कि कैसी कैसी अवस्था में तू वहां रहा था। मुख तो बंद रहता होगा, वह बालक गर्भावस्था में भूख और प्यास से पीड़ित रहता है। यह अपने दुख की बात कही जा रही है, हम आपको याद नहीं है। गर्भ में रहे तब तक कैसे दुख सहे, शायद किसी को भी याद न होगा। और तो जाने दो, गर्भ से निकला और 1-2 साल तक जो बीती होगी, उस तक की भी याद नहीं है। बचपन के क्लेश, बचपन के दुख का कुछ अनुमान करो। जैसे अभी हम आपको कोई किसी संदूक में बंद कर दे, जहां हवा न मिले, पानी पीने को भी कोई न पूछे, तो कैसा गुजरेगा? माँ का पेट तो पूरा संदूक है इस गर्भ वाले बालक के लिए, पड़ा है सिकुड़ा हुआ, किस तरह से भीचा हुआ वह गर्भ में रहता है, उसके दुख की बात वही जाने। जब निकलता है गर्भ से, तब उसे कुछ आंखों से दिखता होगा, जो कुछ भी, बोल तो सकता नहीं, पर सब कुछ अचंभे की बात नजर आती होगी। क्या है, जब उत्पन्न होते ही बच्चा रोता है, तो उसकी आवाज कहां कहां इस तरह हुआ करती है, कहां रोते में, तो कभी लोग यह कहते हैं, वो बच्चा यह सोच रहा है कि अब मैं कहां आ गया, उसे तो सारी बात नहीं मालूम होती है। प्रकरण चल रहा है कि संसार में जितने भी क्लेश हैं, वे इस शरीर के कारण हैं। जीव का शरीर से संबंध है, इसी से सारे दुख हैं। लेकिन ये उन दुखों को सुख मानकर इसी दुख में रम रहा है। गर्भ में बच्चे को रहने के लिए कितनी जगह है, हम आप तो एक पूरे कमरे में भी रहते हुए सोचते हैं कि हमारे रहने का स्थान बहुत छोटा है, और पेट में कितना स्थान मिलता है इस बच्चे को रहने के लिए। सिकुड़ा रहता है, उसके पास कहीं इतना भी स्थान नहीं है कि थोड़ा सा सरक तो ले, कभी करवट बदल तो ले। गर्भस्थ बालक के आंतरिक क्लेश, गर्भस्थ बालक इतना अशक्त है, लेकिन मन उसको तभी से है जब से गर्भ में आया। संगी पंचेंद्रिय शरीर चाहे गर्भ में 3-4 महीने तक कुछ पूर्ण बन भी नहीं पाता हुआ, लेकिन मन बराबर उसी दिन से है जिस दिन से बालक गर्भ में आया है, और मन से विचारने के दुख, कल्पनाएं करने के दुख चल रहे हैं। पेट में थोड़ा सा स्थान है, वहां बच्चे का हलन चलन बनता नहीं है, उस बच्चे के साथ कौन है वहां? पेट में कोई कीड़े वगैरह हो तो वे ही उसके साथी हो सकते हैं, और कीड़े होते ही है हमारे सब आपके सबके पेट में, किसी न किसी प्रकार के किसी रूप में बने ही रहते हैं त्रस जीव, वे ही मात्र उस जीव के साथी समझिए। ऐसी गर्भावस्था में प्राणी ने बड़े क्लेश सहे हैं, और जब गर्भावस्था से निकला तब भी महान क्लेश हुआ। इस मनुष्य भव में गर्भ से ही क्लेशों की शुरुआत होती है, शुरुआत है। कहीं कहां सुना है कि पढ़ा मैंने, वो तो देवों को अवधि ज्ञान से तो पता चलता है कि ऐसे यहाँ से देव निकलते हैं तो मनुष्य तीरंजे के वहां तो गर्भ में उत्पन्न होते हैं, क्योंकि देवों में से निकल कर तो गर्भ जी हो गए ना, समूर्छन में तो जाते नहीं है। तो ये उनको ये तो पता चलता है ना कि माँ के पेट में सिकुड़कर ऐसा है, वो आजू बाजू में कितने वो विष्ठा ये वो सब खून खून भरे जो एरिया है सब ऐसे ही है, तो उनको ऐसा लगता है अरे ये नहीं चाहिए नहीं चाहिए, तो जाके केंद्र में उत्पन्न होते हैं। उसे वो हीरा माणक अच्छा लगता है, अरे वहां उत्पन्न होना। कहां पढ़ा मैंने पता नहीं मुझे। क्लेश मिटाने के थोथे सांसारिक प्रोग्राम, थोथे ने उसका कोई उपयोग नहीं, निष्फल है। हाँ। हे प्राणी, तो क्लेशों को मिटाने के लिए बहुत से सांसारिक प्रोग्राम क्यों बनाता है? क्या सांसारिक प्रोग्राम? अभी तो मालूम है सबको क्या क्या। हाँ? नहीं नहीं, सांसारिक प्रोग्राम आने देखो देखो, क्लेश मिटाने के लिए क्या कहते। हाँ, कोई घूमने जाना है, वो साइट सीइंग में जाना है, भोजन के लिए बाहर रेस्टोरेंट में जाना है, और क्या क्या होते हैं प्रोग्राम, वो सब ले लो इसमें। पिक्चर देखनी है, शादी में जाना है, ऐसा जाओ। अरे सभी प्रोग्राम तो चल ही रहे ना हरेक के। अभी दिन में दो बार तो भोजन करना का प्रोग्राम तो चल ही रहा है, और जब चाहे तब मुंह तो खुला है, जो चाहे खाते रहते हैं। जैसे बहने वाली नदी में किसी जगह कोई कच्चा बांध बांधने का यत्न करता है तो काहे को वह यत्न करता है, थोड़ी देर में ही वह बह जाएगा। ऐसे ही सांसारिक सुख पाने के लिए, क्लेशों से दूर होने के लिए बड़े यत्न कर रहे हैं। हमारे पास धन जुड़ जाए, मकान बन जाए, नगर में मेरी कीर्ति छा जाए, ऐसी बातें तू काहे को सोच रहा है? अरे इतना तो विकट दुख यथाशीघ्र मिलेगा जब तू गर्भ में पहुंचेगा या अन्य प्रकार जन्मेगा, क्योंकि यहां से तुझे जाना है। यहां तो जन्म के दुख बताने इसलिए कहते कि पहले तो मरण की बात आई थी कि क्या भरोसा, अभी कहते जन्म में इतना दुख है तो अभी तो जन्म लेना ही नहीं कहीं ना कहीं, ये कह रहे। तब दुख ही दुख है, तो इस संसार में उन दुखों से छूटने के लिए तो यहाँ के स्वप्न के प्रयत्न क्यों कर रहा है? क्योंकि जो कुछ भी बातें यहाँ तू हासिल भी करेगा तो तुझे जन्म लेना है दूसरी जगह। दुखों से छूटना है तो तू शुद्ध प्रयत्न कर। वह शुद्ध प्रयत्न क्या है? यदि शरीर से भिन्न ज्ञानानंद मात्र निज स्वरूप अस्तित्व में अपने आप को देखो, जैसा अपना अस्तित्व है वैसे अपना स्वीकार करो। यह मैं, यह कहने डायरेक्ट बता रहे कि साक्षात हूं मैं, यह मैं सबसे न्यारा जुदा ज्ञान घन आत्मा हूं, ऐसी दृष्टि बना। दृष्टि बनाने ऐसे अपने को स्व को मानो, अपने आप में आराम विश्राम कर, यानी उसी में जम जाओ रम जाओ। मरण भय में जन्म क्लेश भय की अंतर निहितता, यानी इसलिए मरण का भय है क्योंकि उसमें जन्म का भय छिपा हुआ है, अंतर निहित है, अंतर गर्भित है। तू मरण से डर रहा है, यह मरण जन्म का कारण है। जन्म भी दुखमय है, मरण भी दुखमय है। मालूम होता है कि तू मरण से क्या डर रहा है, जन्म के दुख से डर रहा है। यानी उसको ऐसा उसको समझाने के लिए कह रहे हैं, ये तो आ ही रहे हैं, जन्म और मरण ये जीवन के ओर छोर है। ये पहला और अंतिम ही तो नहीं, ओर छोर नहीं, साथ साथ नहीं, दो दो, हाँ दो ओर है, दो एंड है, दो किनारे है, दो किनारे बराबर। जैसे एक बांस के पोर में दोनों ओर यानी ओर और छोर पर आग लगी हो और उसके बीच में कीड़ा हो तो उस कीड़े का कौन सहाय है। ऐसे ही हमारे जीवन के जिंदगी के ओर में तो गर्भ और जन्म का क्लेश है, जन्म की आग लगी है और जीवन के छोर में मरण की आग लगी है। ऐसे हमारे जिंदगी के ओर छोर बड़ी कष्ट ज्वाला से जल रहे हैं, उसके बीच में हम आप जंतु पड़े हुए हैं। काहे की कुशलता? लोग पूछते हैं भाई कुशलता तो है ना, कैसे हो? एक दूसरे पहले प्रश्न तो ये ठीक है ना, कैसे तबीयत? अरे काहे की कुशलता बताएं? यह संसारी सारा क्लेशमय है, जन्मे मरे यही इस लोक में होता है। कैसे हो तो कहते ऐसी नौबत आएगी, अभी जिंदा हूं इतना कह पड़ेगी। अब यही पर पड़ाव है अभी इस मनुष्य भाव में, आगे नहीं बढ़े अभी। आज यह मनुष्य की जिंदगी पाई तो कौन सी बड़ी बात पाई, यह भी स्वप्न है, स्वप्नवत है, थोड़े जीवन का काम है, मरेंगे। जो बात अपरमार्थ है, वास्तविक नहीं है, उसका भय किया जा रहा है। क्या वास्तविक नहीं है? जन्म मरण वास्तविक तो मेरे नहीं है, मैं तो अनादि अनंत हूं, है ना, अजन्मा हूं, अमरण अमर हूं, अजर हूं। फिर भी ये जन्म और मरण का भय लगा हुआ है इसको, स्वप्न का क्लेश। एक सेठ था, उसे दिन में नींद आ गई। पड़ा तो है वह अपने अच्छे ठंडे कमरे में, ये एसी लगा कर सोया है। स्वप्न आ गए कि मुझे बहुत तेज गर्मी लग रही है, चलो समुद्र की शीतल लहरों में थोड़ा पहुंचे। सो चलने को हुआ कि स्त्री पुत्र नौकर आदि सभी कहने लगे, हमको भी तो गर्मी लग रही है, हम भी चलेंगे। वे सबके सब नाव में बैठकर सैर करने चले। नाव जब मील दो मील दूर निकल गई तो समुद्र में एक भंवर उठी, नाव डगमगाने लगी। नाविक बोलता है कि नाव तो अब डूब जाएगी, बचेगी नहीं। तो सेठ बोला, भाई हमें बचाओ, हमसे 1000 रुपए ले लो, 5000 ले लो, हमें यहां से बचाओ। वह कहता कि जब हम ही न रहेंगे तो रुपए कौन लेगा, हम तो नाव छोड़कर तीरे जा रहे हैं। यह सब स्वप्न की बातें कही जा रही है। जिसे ऐसा स्वप्न आए, सर्व इकट्ठा जोड़ाक्षर, उसके दुख का क्या ठिकाना। सेठ दुखी हो रहा है, सारा दुख स्वप्न में हो रहा है। नाविक तो नाव से कूदकर पार होने लगा और सेठ बड़े कष्ट में है। देखो, कहा तो सेठ कोमल गद्दे में अच्छे ठंडे कमरे में पड़ा हुआ है, कुछ सेवक लोग उसका मन बहलाने के लिए उसके जगने का इंतजार किए बैठे हैं, मगर सेठ की क्या हालत हो रही है, बड़ा दुखी है। इतने साधन मौजूद है पर सेठ के दुख को मिटाने में कोई समर्थ नहीं है। सेठ का दुख मिट सकता है तो मात्र एक उपाय से, कि उसकी नींद खुल जाए, जग जाए तो उसका क्लेश मिटेगा। जगने पर देखता है कि वहां न समुद्र है, न नाव है, न कोई डूब रहा है। लो, अब उसके रंच भी दुख नहीं रहा। ऐसा भी होता है ना, कोई हमारे सपने में ऐसा कुछ चलता है कि परेशान परेशान में शायद कोई हमारा खो जाता है, या हम कहीं रास्ता भूल जाते हैं, जो कुछ हो जाता है। पहले तो परीक्षा के समय, परीक्षा देने के बाद सपने आते थे, परीक्षा में गए हैं और ये भूल गए हैं, वो भूल गए हैं, या ऐसा कुछ। परेशान परेशान जग जाते तो हाश होता है ना, यही उसका है। जो कहते अब उसके रंच भी दुख नहीं रहा, कब? जब जाग गया तब। मोह निद्रा का क्लेश, अभी उससे भी भयंकर निद्रा है ये, इससे तो जगता ही नहीं और वो उसका वही का वही उसको जीवन लगता है। ऐसे इस मोही प्राणी को मोह की नींद में स्वप्न आ रहे हैं, मेरा घर है, मेरा कुटुंब है, मेरा वैभव है आदि, ये सारा मेरा मेरा कर रहे ना, ये तो मोह निद्रा है। सपने में कोई भी बात झूठ तो नहीं मालूम होती, तब तो वो सच्ची लग रही थी ना सपने में, तभी तो इतना परेशान होकर दौड़ धूप कर रहा था। ऐसे ही मोह के समय में जो कुछ हम परख रहे हैं, जान रहे हैं, यह झूठ नहीं मालूम देता। लेकिन जब हमारी मोह की नींद खुल जाएगी, ज्ञान जग जाएगा, तब समझ में आएगा कि कहां है मेरा यहां कुछ। अरे मैं तो अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव से चैतन्य शक्ति रूप हूं, सबसे न्यारा हूं। जहां यह दृष्टि जगी कि उसका सारा क्लेश मिट गया, कि मैं तो अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव चैतन्य, मैं तो चैतन्य मात्र हूं, तो जब मोह निद्रा छूट जाएगी उसकी, जग जाएगा, तो क्लेश भी नहीं रहेगी। जैसे सपने से उठते हाश हो जाता है ना, वैसे यह दृष्टि जगी कि उसका सारा क्लेश मिट गया। कितना विचित्र क्लेश है संसार में, क्लेश है भी और नहीं भी है। है तो बड़ा विकट पहाड़ सा लगता है, और न समझे तो क्लेश तो कहीं नहीं है। अभी अपनी ही जिंदगी में घटनाएं देखो जो रोज आती है, कल्पनाएं बड़ा बड़ा कर दुख कर डालते हैं। हम आपको तो कोई क्लेश नहीं है, लाखों आदमियों से हम आपकी स्थिति अच्छी है, और परमार्थ दृष्टि से तो मेरे आत्मा में कुछ अनिष्ट गुजर ही नहीं रहा है। कहां क्लेश है, कुछ क्लेश न लगेगा। शांति के लिए अथक प्रयत्न तो किए जा रहे हैं, पर एक शुद्ध स्वाधीन दृष्टि बनाने रूप प्रयत्न नहीं किया जा रहा। मैंने सारे प्रयत्न शांति के लिए हो रहे हैं, परंतु जो सच्चा उसका उपाय है क्या है, एक शुद्ध स्वाधीन दृष्टि बनाने रूप प्रयत्न नहीं किए जा रहे। जो वास्तविक काम है उसकी ओर तो दृष्टि नहीं है, और जो काल्पनिक है उनकी ओर बेसुध होकर लग रहे हैं। धन बढ़ रहा है तो उसकी खुशी का क्लेश भोगा जा रहा है। किसका कोई क्लेश, खुशी का क्लेश, उसमें जो खुश होना ये भी क्लेश है कहते हैं। खुशी में क्या क्लेश नहीं होता, वो भी एक शोभ का है ना, मोह शोभ जो है। हाँ, सांसारिक हर्ष का क्लेश, जो हर्ष और शोक के दोनों ही क्लेश रूप है संसार में, जिसको हम हर्ष कहते हैं, या कोई चीज मिल जाए उसकी, उसमें जो हर्षित हो रहा है वो इटसेल्फ क्लेश है। एक सांप थे अंग्रेज, उसकी आदत लॉटरी लगाने की थी। 10 रुपए लगाया तो 10-20 हजार, लाख 2 लाख का इनाम मिलता था, पर उसको कभी इनाम नहीं मिला। सैकड़ों बार उसने लॉटरी लगाई। एक बार उसने सोचा, हमारा जो यह चपरासी है इसके नाम पर लगा दे, सो 10 रुपए उसके नाम से लगा दिए। संयोग की बात कि उसके नाम से 2 लाख रुपए निकल आए। सांप सोचता है कि इसको यदि ऐसे ही मैं कह दूं कि तुझे ये 2 लाख रुपए मिले हैं, तो वह हर्ष के मारे फूला न समाएगा, मर जाएगा, बच नहीं सकता। हर्ष की ऐसी चोट होती है। तब साहब ने क्या किया, पहले तो चपरासी को बेंतों से मारकर दुख दिया। वह कराहने लगा। जब कष्ट में हो गया तो उसी बीच में कहा कि तेरे नाम से 2 लाख रुपए आए हैं लॉटरी में, सो तू इन्हें संभाल। तो ऐसे दुख के बीच कुछ सुख की बात सुनने में आए तो उसकी संभाल रह सकती ना। बाद में वह चपरासी बोला, हुजूर हम क्या करेंगे, कहाँ लगाएंगे, हम में इतनी बुद्धि नहीं है। उस अंग्रेज ने कोई बड़ा काम छेड़ दिया और उसी में नौकरी बजाने लगा, मैनेजर हो गया। हर्ष के अतिरेक में पीड़ा। हर्ष का भी बड़ा क्लेश होता है। अभी किसी बात पर कुछ तेज हंसी आ जाए, आध मौन मिनट तक के लिए, तो पेट ऐसा फूल जाता है। आध पौन चाहिए, मौन नहीं, आध पौन, आधे आधे पौने मिनट तक के लिए। फिर से पढ़ते से, अभी किसी बात पर कुछ तेज हंसी आ जाए आध पौन मिनट तक के लिए, तो पेट ऐसा फूल जाता है कि श्वास लेने की भी गुंजाइश नहीं रहती। तो वो हंसने वाला मारकर कहता है कि अब मत हंसा। मरकर कैसे कहेगा, मारकर कहता है, यानी वो अभी कहता है कि बस हंसा मत, मुझे तो हंसी में बड़ा क्लेश हो रहा है। तो यह जो पाए हुए समागमों में हंसी खुशी मानी जा रही है, उसका कोई उसका उससे कई गुना दुख भोगना पड़ेगा। हंस लो जितना हंस सको, पर इसके एवज में कई गुना कष्ट आएगा। जितने भी क्लेश है वे सब क्लेश इस शरीर के संबंध से हो रहे हैं। नरक गति के क्लेश तो दूर ही रहे, उनका तो स्मरण भी हो तो शस्त्राघात की तरह, शस्त्राघात समझ रहे, किसी शस्त्र से कोई आघात करे अपने को, मार दे, इस समय भी बड़े क्लेश का कारण बनेगा। यह उत्तम मनुष्य पर्याय पाई है, इस मनुष्य पर्याय के ही क्लेश देख लो। इस मनुष्य पर्याय को ग्रहण करते हुए शुरुआत में ही गर्भ के समय ही कैसे कैसे दुख हुए हैं, उसका कुछ चिंतन तो करो। मरण क्लेश में जन्म क्लेश का भय। कवि कहता है कि हम तो ऐसा मानते हैं कि जो तू मरण से डर रहा है, सो मरण भय पीछे कोई नवीन जन्म धारण करना पड़ेगा। सो जन्म विषय तो तूने क्लेश पाया है, कुछ ख्याल है, तिसके भय से तेरे मरण का भय पाया जा रहा है। यानी तू मरण से इसलिए डर रहा है कि मैं मरूंगा तो फिर जन्म पाऊंगा, और जन्म के समय में तो मरण से भी कई गुना अधिक क्लेश है। सो मालूम होता है कि जन्म के क्लेशों के मारे तू मरण से डर रहा है। यह न जान कि क्लेश मरण में ही होता है, मरण से भी अधिक क्लेश जन्म में हुआ करते हैं। मरण से इसलिए डर रहा है यह कि अब जन्म में दुख भोगने पड़ेंगे। सो वह मरण का भय नहीं है, जन्म का भय है। जन्म में जो महान कष्ट होता है उसे नहीं सह सकता यह जीव। संकट विनाश का प्रयोग। भैया अब ऐसा उद्यम करो जिससे जन्म का दुख ही न हो। यह बात अपने आप के अंतरंग में जितनी दृढ़ भावना यह बना ले, मैं शरीर से रहित केवल ज्ञानानंद स्वरूप एक सत हूं। परिजन से, परिजन हमारा परिवार जो कुछ है, वैभव से, शरीर से मोह न रहे, अज्ञान न रहे, ऐसा मैं हूं। यह मेरा है, यह मेरा हितरूप है, यह अज्ञान न रहे, और जैसा यह मैं आत्म तत्व हूं, आत्मा तत्व ने आत्म तत्व हूं, ऐसा ही अपने आप को मानूं तो मेरे ये संकट छूट सकते हैं। शरीर को यह मैं हूं ऐसा मानते रहेंगे तो शरीर मिलते ही रहेंगे। देखो यही बिल्कुल ऐसी सिंपल लगती है, परंतु एक में यही कारण है, शरीर मैं हूं मानता है तो उसका और नए नए शरीर मिलते ही रहेंगे, क्योंकि वही तो मिथ्या तो है ना, तो उसके और बहुत निश्चित है आगे वाले। यानी यही सारी कोशिश कैसी होती है इसकी, जो कि कुछ पाप छोड़कर कुछ पुण्य करे, पूरा तो छोड़ नहीं सकता है और पुण्य लगातार होते नहीं है, तो बीच में तो पाप भी करता ही रहता है, क्योंकि भोगने रूप इच्छा ये भी तो पाप ही है। यानी उसमें मूल जो बात है, मूल उपाय है, उसको नहीं करता है और ऊपरी ऊपरी कुछ क्रियाएं करके मानता है कि अभी मैं आगे बढ़ रहा। आखिर यह भी प्रभु तो है ना, भगवान है, समर्थ है, अनंतशाली है। शरीर को ही मानते रहेंगे कि यह मैं हूं तो इसे शरीर मिलते रहेंगे। इस भगवान आत्मा को जो प्रिय है वह इसके लिए सदैव हाजिर है। क्योंकि जैसा वो सोचता रहता है, जैसा वो परिणाम करेगा वैसे उसको फल मिलेगा। संसार प्रिय है, विषय प्रिय है, तो ये सब बराबर मिलते रहेंगे। आखिर है तो आत्मा ऐश्वर्यशाली ना, कैसी इसकी विचित्र लीला है कि यह पेड़ों में जन्म लेगा तो शाखा डाली कोमल पत्ते तने और नसें आदि सब रूपों में वह आत्मा कैसे फैल जाता है, ऐसी भी वह लीला किया करता है। जब जिस शरीर में पहुंचता है तब उस शरीर रूप विस्तृत रहने की लीला करता है। शरीर में यूं लीला कर रहा है, चेत जा अपने आप के स्वरूप को संभाल सके तो यह अनंत ज्ञान की लीला करने लगेगा। जन्म और मरण आदि के जितने भी क्लेश हैं, वे सब इस शरीर के संबंध है। अहर्निश यानी दिन रात, ऐसी भावना बनाओ कि मैं सबसे न्यारा केवल ज्ञानानंद स्वरूप एक आत्मा हूं। इस ज्ञान भावना के बल से ही समस्त संकट दूर हो गए। जा कृपाणीयम अनुष्ठितम त्वया विकल्प मुग्धेन भवादितः पुरा यदत्र किंचित सुखरूप माप्यते। रू दीर्घ चाहिए, रू दीर्घ तदार्य विंध्यन विध्यंधक विध्यंधक धैर्य, एक शब्द है जोड़ाक्षर विध्यंधक वर्तकीयकम बराबर पढ़ेंगे। अजाकृपाणीयमनुष्ठितं त्वया विकल्प मुग्धेन भवादितः पुरा यदत्र किंचित सुखरूपमाप्यते तदार्य विंध्यंधकवर्तकीयकम्। वंशस्थस्य, ये अभी चल रहे ना अपना लघु तत्व स्फोट में, ऐसे ही चाल लगती है उसको। इसका अर्थ देख लेते हैं, अभी है 2-3 मिनट। हे आर्य बहुला जीव, तेईस पर्याय ते पहले अजाकृपाणीय कार्य किया। अजाकृपाणीय का अर्थ बताते हैं। अजा समझते हैं, अजय ने बकरा, अजय ने वो मेंढी शेरी, छेली कहते उसको हिंदी में, बकरी अजय ने बकरी, अजय ने बकरा। जैसे अजा जो छेली ताको मारने के अर्थी कोई छुरी चाहता था, बोरी उस छेली ने खुरते खोदी छुरी काढ़ी तिस्ते वाका मरण भया। समझे क्या नहीं, उसने खुद खुर से उखड़ कर जमीन में से छुरी निकाल कर दी। तैसे जा कारण करी तेरा घात होई बुरा होई सोई कार्य किया अजा कृपाणीय, उसने कृपाण निकाल के दिया स्वयं अपने को मारने के। कैसा है तू विकल्प, जो है ये उपादेय का विचार ता विषय मूर्ख है। बोरी संसार विषय जो किचु सुखरूप विषयादिक का सेवन पाई है ताकू तू अंधक वर्तकीयक जानी। अंधक वर्तकीय क्या होता है, जैसे आधा अंधा चाहिए, जैसे अंधा ताली देते ही बटेर को पकड़े ताका बड़ा आश्चर्य है। तैसे संसार विषय थोड़ा भी सुख होने का बड़ा आश्चर्य जानना, जिसको कहते हैं तो काकतालीय न्याय, ऐसे बाय चांस कभी कुछ हो जाए। भावार्थ, हे जीव, तय चेली की चुरीवत अपना बुरा होने का कार्य किया। बहुरीस पर्याय विषय तो को किचु विषय सेवन तय सुख सा भया, ताकरी तू जाने है कि मेरी ऐसी ही दशा रहेगी, ऐसे जानी निश्चिंत भया है। सो ऐसी भी अवस्था इस संसार विषय आंधे की बटेर समान है, ताते याके भरोसे निश्चिंत रहना योग्य नाही। अब इसको यहाँ से पढ़ेंगे, मगर अभी कल पढ़ेंगे, अभी समय हो गया। इस श्लोक के नीचे से वहां से पढ़ेंगे कल। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तकनम सदा देत हो।